अनुराग कौन सन्न हो गया, कौन अनुराग हो गया है, कौन भाव तो पहले से है और भाव से उनमें प्रेम आया, प्रेम से बढ़ करके फिर प्रणय और अनुराग, राग अनुराग वहां पर अनुराग जाता अनुरागो, अर्थात वो रंग बार बार चढ़ता जाता, नया नया नित्य नवीन रंग। जब जब कीर्तन करते हैं भव अनुरूप आ जाता, जैसे गोविंद नाम किया, गोविंद नाम में जब गो पर अधिक जोर देते हैं एक भाव,
विंद पर जब जोर श्रेष्ठ देते हैं अन्य भाव,
जब तीनों पर देते हैं तो एक भाव, उनमें से कोई एक थोड़ा सा कम किसी पर अधिक देते, नाना प्रकार के भाव उसमें आते हैं।
गोविंद
हमारी इंद्रियों में जो गोपियों के नहीं जो बल्लम है वो हमारे इंद्रियों के प्रत्येक रोम रोम में वो व्याप्त हो, बिंद मने रहना, उसमें स्थित हो जाए, हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब में वो व्याप्त होकर करें, बिंद की माने व्याप्त हो। इसी प्रकार से कितने इसके अर्थ हों, यदि गो का अर्थ ले गोप सखा एक अर्थ हो जाएगा, यदि गो का अर्थ ले गायों की मंडली में उनको चराने वाले एक अर्थ, गो माने यदि गोपी ले लेंगे तो अन्य अर्थ, गो माने गोपी जसोदार्थ होगा तो उसका एक दूसरा। इस तरह से भाव के अनुरूप वो अनुराग का प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। दूतचित्त उच्चैः, दूतचित्त मैंने दूत मैंने होता है अविलंब, बहुत शीघ्र से किया नहीं, और यहां पर दूत चित्त अर्थात जो द्रवित चित्त है, समण करते हैं एकदम चित्त उनका द्रवित हो जाता है, रोमांच कंप अशुभ रूप इत्यादि हो जाते हैं, उत्तम भागों को फिर ये लगता है, साधक में रखा जाएगा तो उत्तम भागवत और नहीं तो सिद्ध हो गया तो कोई बात नहीं, यहां पर साधक के लिए था। इसलिए उच्च भक्त, उच्च भक्त कौन होगा, अन्नाभिलाषिता श्रीमं ज्ञान करना जनाभृतम आन पुण्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति जब कोई संसारिक हमारी कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाए, जीवन का निर्वाह कैसे होगा, अभी तो चल रहा है गुरु जी हैं, गुरु जी नहीं रहेंगे तो जीवन का निर्वाह कैसा होगा, इसलिए उसके लिए व्यवस्था करनी है, और कृष्ण प्रेम रह गया कोई भी काम नहीं, ये चीज हमारे अंदर में अभाव है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, कम पढ़ा लिखा हूं मुझको पढ़ना है, ये कबीलाता आ गई और पढ़ने पर जोर चला गया, भक्ति रह गई, हरिदास ठाकुर जैसा जीवन हो, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा जीवन हो, ऐसे जीवन हो, प्रहलाद महाराज जी जैसा जीवन हो, तब ये जा सके, रूप सनातन जैसा जीवन हो, कोई भी अन्य अभिलाषा कृष्ण भक्ति की वृद्धि के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा मुझे अब गुरु जी को छोड़कर के अपने सुख की अभिलाषा कुछ है, मैं उनसे दूर रहने से हमारे लिए ये सुविधा बस हो गया, कोई भी अभिलाषा नहीं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, सुख में सुख बस उसी दिन कृष्ण मिल जाए, और इस दूर में किंतु ये भाव हम लोगों के आते में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह जाती है, तो दुर्बचित तब उच्च चित्त एकदम द्रवित हो जाएगा, वैसे नाम करने से जब कोई अपना अभिलाषा नहीं हो, जो पाप व्रत जो कुछ भी है ज्ञान इत्यादि सब उसमें दूर हो, इनके द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तब भक्ति होगी, तो भक्ति बिगड़ जाएगी, ज्ञान पहले तत्व ज्ञान हो
इसके बाद में और सब हो, इसके बाद में भक्ति करेंगे,
अथवा बस।
इसलिए ज्ञानम ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य, ज्ञान की भी इच्छा को अभिलाषा इत्यादि को दूर रखते स्थाने स्थिता तुम वांग मनोवी, अपने स्थान पर आकर के, अपने स्थान मैंने भक्तों के स्थान पर रहता है, तन मन वचन सबसे उनकी कथाओं के आदर पूर्वक श्रवण में, जो कथा वाचक है उसके प्रति, जो कथा के श्रोता है उनके प्रति, जो कथा के वक्ता है उनके प्रति, कथा के स्थान को सबको प्रणाम करें। कल अभी बताया ना सुखदेव गोस्वामी जी, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, किसको? श्रोता और वक्ता। कौन श्रोता? तो खुद है, वक्ता तो वो खुद है। भावी काल में जो वक्ता होंगे भागवत के और श्रोता होंगे, है ना, उसके हरियाके हरिवे जो तो प्रभु कौन
प्रभु जो तो
प्रभु रख
हमारे
प्रभु में आप तक जितने भी होंगे भविष्य में प्रभु के दास, कृष्ण के दास, महाप्रभु के दास, श्रीमती राधिका के दास, जितने होंगे अभी समय दंतों में घास लेकर के तीन ही होकर के उनकी चरण की वंदना कर रहा, ऐसे ही सबके लिए, ये भी उन लोगों के लिए हसत हो चित्त द्रवित हो जाता है, तब कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी रुलाता भी है, कभी गाता है, कभी उन्माद की भांति नृत्य करने लगता है, कभी जमीन में लोट पोट करने लगता है, उसकी स्थिति को वर्णन नहीं किया जा सकता, किस भाव में कैसे हो रहा है, वो स्थिति हो जाती है वो क्या, जिसको मन से भी बतला और क्या बतलाया नहीं जा सकता, ऐसे हो जाता वो सब आजकल सब प्रति याद नहीं, निर्वचनीय अनर्वचनीय अनर्वचनीय हो जाता है। हंसता किस लिए है? चिंतन कर रहा है, बिना चिंतन करते करते हठात उसने कृष्ण को दर्शन किया, बच्चों के साथ में देख रहा है, ये खेलते खेलते एक घर में घुस गया, उसके बेटे को कह दिया जे जाओ तो बछड़े को खोल दो, बछड़ा उसने खोल दिया उसका बेटे, और मैया से जाकर के कह देना जो बछड़ा दूध पी रहा है, वो दूध पीने लग गया बछड़ा खोल दिया, और इतने में जब मैया वहां से दौड़ी तो ये सब बच्चे सब उस घर में घुस करके जितना मक्खन तखन सब चोरी करने लगे, ये देख करके या फिर और कोई लीला देखा, कभी रोता है, देखा जो गिरह की कृष्ण मिले अभी अभी अंतर ध्यान हो गए, या गोपियों को छोड़कर के चले गए मथुरा, उसके हृदय में भावना आई, और जैसे वो रो रही है ये भी रोने रो दो, गायक उन्माद की भांति उन्माद ग्रस्त होकर के जैसे पागल कभी जाता है, कभी इधर का बात उधर का बात जाता है, ऐसे ही उन्माद होकर के कृष्ण लीला संबंधी बातों का ये गान करने लगते, कभी जमीन में लोटने लगते, कभी हाय हाय करने लगते हैं, उनको ऊपर में किसी का अंकुश नहीं है, प्रेम के मारे प्रेम का अंकुश उनके ऊपर में केवल है, लोक बाह्य और लोक बाह्य अर्थात लोक की उपेक्षा नहीं करके कहां वो नृत्य करने लगता है, किसी का वो ये नहीं कहता ये लोग क्या कहेंगे, अभी हम लोगों को है गले में यदि माला पहन ली तिलक पहन ली तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग नहीं पहने, माला लेकर के बैठ जाए हरिनाम करने की तो घर वाले लोग कहेंगे ये क्या करने लगा है, अभी लोग अपेक्षा, इस तरह से सभी अभी लोग को अपेक्षा है, उनकी लोग की अपेक्षा नहीं होती ये क्या कर रहे हैं नहीं, तो ये लक्षण किसका बतलाए महाभागवत, भगवान की भक्ति ऐसी है
भगवान का नाम ही ऐसा है जो कुछ दिनों के बाद में ऐसा करा देगा। ये कृष्ण प्रेम को पाने का उपाय है। सबसे श्रेष्ठ कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला का चिंतन करते हुए मन को लगा करके और जीवा के द्वारा कीर्तन करें, जोर जोर से करें। हम लोग कहते हैं धीरे धीरे नाम ना, जब दूसरा कोई न सुने इसलिए मन इधर उधर जा सकता है, और जोर से यदि चिल्ला करके करेंगे ना मन अपने आप वहां पर स्थित, इसलिए उच्च स्तर से नाम से कम करने की स्थिति बताइए। ऐसे भक्तों की कोई एकांतिक अपना भाव हो, साधारण अवस्था से एक भाव पर उसका चित्त जम जाता है, पांच भाव में से कोई एक भाव हो, और तब फिर उसी संसार में अपना साधन भजन जो कुछ करता है उसी क्रम में भाव में स्थिर हुआ। हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा में हम क्या चाहते हैं, जब ये स्थिर नहीं हुआ तो ये सब भाव नहीं है, इसलिए उसकी कैसी निष्ठा रहनी चाहिए। एकांतिक निष्ठा का एक और उदाहरण यहां पर है, जह कौमार हर स एव ही परे चोन मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ कदम्बा नीला सा चैवास्मी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी तरुतले समुत्कंठ से। हम लोगों ने रथ यात्रा के समय में बहुत बार इस श्लोक को हम लोगों ने पाठ किया है, प्राय सभी लोग जानते हैं उन्हीं को, तभी संक्षेप में बतला रहा। ये उक्ति गोपियों में जो सबसे प्रधान है वो श्रीमती राधिका जी की। कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका पहुंच गए और वहां पर उनकी शादी हो गई। 16,108 महिषियों से उन्होंने विवाह कर लिया और उनके पुत्र प्रपौत्र भी जन्म दे दिए, काफी वर्ष हो गए। इसके बाद में जब वो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं उस समय की बात, गोपी आदमी नंद बाबा यशोदा के साथ में वहां पर पहुंचे कुरुक्षेत्र। पहुंचने पर कृष्ण सबको छोड़ छाड़ करके, समस्त कुटुंबियों को आत्मीय स्वजनों को छोड़ करके नंद बाबा यशोदा जी से मिले। नंद बाबा यशोदा जी भी बड़ी चतुर हैं, उन्होंने भी देखा कि ये गोपियां अब तक मरिए मरी अभी कृष्ण के विरह में, अभी तक दूर थी तो इसलिए उनके प्राण धारण हो रहे थे, किंतु अब निकट में आकर के यदि उनसे नहीं मिलेंगे तो अब तो उनका मरना और समाधि मरने वाली थी, इसलिए जान पूछ करके वो लोग वहां से हट गए। बलदेव जी भी बड़ी चतुर बुद्धि में, इसलिए मैया के साथ भी वहां से निकल गए, इसलिए दोनों में गोपियों में और कृष्ण में वहां पर मिलन हुआ। इसके बाद में गोपियों ने कृष्ण ने गोपियों से कुछ कही, अंत में कृष्ण को उन्होंने निवेदन किया जे आप वृंदावन में पधारे। वही प्रश्न उसी को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं, कौन कर रहा है, महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा का यह मूल सार था। रथ यात्रा क्यों और कैसे है इसी के, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रेम में आविष्ट है राधिका के भाव। जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ रहे हैं, उन्हें सोचा कि हमारे मनोरथ पर ये कृष्ण चढ़ रहे हैं और इनको हम वृंदावन में ले जा रहे हैं, और समस्त गोपियां मिलकर के उनको खींच रहे, आदमी को खींच रहा है वो ये भावना है, ये गोपियां ही खींच करके और ले जा रहे राधा जी के अनुग्रह। राधा जी गोपियों को निर्देश रहे कि ऐसे वृंदावन की तरफ में इनको खींच करके ले। कभी कभी वो रथ से पीछे हो जाता। अच्छा, ये सभी गोपियां जा रही हैं ब्रज में, अब देखें जैसे मैं नहीं जाऊंगी, और ये सब लेकर के जा रहे हैं, इन सबको लेकर के ये वृंदावन में जाएंगे कि नहीं, परीक्षा के लिए कृष्ण पीछे हो महाप्रभु जी, उसमें राधा जी हो जाती। तो राधा जी अपने बन करके भावना से ऐसे उस समय महाप्रभु जी की मनस्थिति हो गई, ऐसे तदात्म हो गए कि राधा जी सचमुच में राधा जी का तदात्म हो गए, और होकर के उनकी परीक्षा कृष्ण की कर रहे। जब वो चले तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जो रथ पर चले थे थोड़ा सा मंद रूप में मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके रथ को खड़ा कर दिया, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारा रथ नहीं चलेगा। तो महाप्रभु जी अतः राधा जी तब हंसते हुए, जाओ, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये इतने हजारों लाखों गोपियों के जाने पर भी ये ब्रज में नहीं जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जब तुम यदि नहीं गई तो हम किस लिए ब्रज में जाएंगे, तुम तो जहां रहेगी वहीं पर। तो ये प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के फिर सामने आकर के चलने लगी। जो लाखों आदमी खींच नहीं रहे थे वो रथ अपने आप करता हुआ अपने आप वो चलने लगा। इसको देखकर के श्रीमती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय में ये राधा जी कह रहे हैं, राधा जी का भाव कि देखो वो काव्य प्रकाश का यह श्लोक जो साहित्य में एमएबीए में पढ़ाया जाता है या साहित्य दर्पण में, उसका ये यह अलंकारी कोई यह अलंकार है, इसलिए उस साहित्य दर्पण में जो विद्वान लोग होते हैं इस श्लोक का बहुत आदर करते हैं, यह अत्यंत भाव युक्त है। कोई एक रमणी है, वो किसी अपने रमण से कह रहे, कोई एक नायिका अपने नायक से अपने प्रियतम से वो कह रही है, देखो रेवा रोधसी बेतसी तरुफले चेता समुपकंठते, हमारा मन तो यही कह रहा है कि हम लोग जब जिस समय पहली स्थिति में मिले थे उस समय हम लोगों का ब्याह नहीं हुआ था, अब तो विवाह हो गया, हमारा जब विवाह नहीं हुआ था पहले की बात याद करो, नदी रेवा नदी, रेवा नाम की नदी, उसमें बेतसी बन, बेतसी मैंने बेत का बेत, झाड़ियां और खून, समीपी में कदम्ब के पेड़ हैं, कदम्बला कदम्ब अनिला है ना,
कदम्ब अनिला,
यदि कदम्ब के पेड़ न रहे तो वहां से कदम्ब की वायु कहां से आए, इसलिए असल में नदी के किनारे तो कदम्ब के वृक्ष निकट में तो होंगे नहीं, नदी से लगे हुए पानी में ही बेत के पेड़ हो जाते हैं, वो पानी में ही होते हैं फलते हैं, तो वो बेत के पेड़ नदी के अंदर में है, और उसके पास ही में सुंदर उपवन है, उसमें बेली चमेली इत्यादि फूल पड़े हैं, और उसमें कदम्बों की पंक्तियां और कुंज बने हुए हैं सर, वहां से सुंदर सुगंधित हवा चल रही थी। उस समय जिस समय हम लोगों का प्रथम मिलन हुआ उस समय की बात, उस समय तुम भी कुछ छोटे उम्र के थे, हम भी किशोरी थी, तुम भी किशोर दोनों में, किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप आंखों के इशारे से ही हम दोनों ने, कोई दूती नहीं, कोई कुछ नहीं मिलाने वाला, बस दोनों दोनों से हम लोग वहां पर मिले, स्वच्छंद रूप में मिले, कोई भी विघ्न देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, तीसरा कोई था ही नहीं। वही चैत की रात थी, पूर्णिमा की रात, जा पौवार हरसा एव ही बरत एव चैत्र क्षपा, अभी आप हमारे पति हैं, उस समय आप हमारे पति नहीं थे किंतु आप वही व्यक्ति युवक मैं वही ज्योति हूं। और चैत्र महीने की बसंत ऋतु की ये रात थी पूर्णिमा की, मालती बेली चमेली दुई इत्यादि फूल खिले हुए हैं, नदी में कलकल शब्द हो रहा है, उसमें भी कमल इत्यादि खुले हुए हैं और पेटों से टकरा करके जैसे अभी हम लोग गए थे ना हरिद्वार में, वहां पर भी छोटी छोटी झाड़ियां और उसे गंगा जी कहते हैं कल कल करके शब्द से उधर उधर से ऐसी बात चलती है, इछलाती हुई मानो वो चल रही है। तो वही एक ही नदी बह रही है, कमल के फूल उसमें खिले, सामने में मालती और तरह तरह के फूल सब खिले हुए और प्रौढ़ कदम्ब अनिल माने क्या, उसके फूलों की सुगंध लेकर के कदम्ब बहुत ही सुंदर सुगंध होता है भिन्न भिन्न, और उसको लेकर के बाइक प्रौढ़ होकर के माने धीरे धीरे होकर के चल रही है, माने सब कामोद्दीपक चीज है, माने प्रेम के उन्माद करने वाले सात चौ वासनी, मैं वही हूं जो आज आपके सामने हूं और आप भी वही हैं। तथापि पत्र स्रोत व्यापार विरोध विरोध, उस समय दोनों में जो प्रेम था उसकी अनुकूल ये सब चीजें थी, किंतु आज वो चीजें, मेरा मन तो वही रेवा नदी के तट पर बेटसी के बल के पासी में जो कदम्ब के कुंज यहां पर हैं उसी में हम दोनों मिलकर के बातें कर रहे थे, रसमयी बातें रसमयी बातें और प्रेम से मिल रहे थे, उसमें विघ्न देने वाला या लज्जा की कोई बात नहीं थी, तो दूसरा था ही नहीं, साक्षी केवल ही पेड़ पौधे और पमन और वो सुगंध यही सब और नहीं। ये महाप्रभु जी भाव में उन्माद होकर के उस समय में हजारों लोग जय जय जगन्नाथ की ध्वनि कर रहे थे, एक साथ में मृदंग मिलकर के मानो मेघ गर्जन कर रहा, भक्त लोग सुरीले कंठ से ऐसे गा रहे थे मानो आकाश तक वो भेद करके उनकी ध्वनि सब मिला करके, कोई किसी की बात नहीं सुनता था, और महाप्रभु जी भाव में गदगद होकर के आंखों में आंसू लेकर के मतवारे होकर के प्रेम में और श्लोक का पाठ कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति उसको अच्छी तरह से सुन रहा कौन बहुत छोटा था और एक व्यक्ति उसको समझ रहे थे वो थे स्वरूप दामोदर, वो भी भाव में तन में थे, और ये बालक बालक माने क्या है, ये माने प्रेम का बालक बहुत खुशाल प्रेषित नैनों से और प्रेषित हृदय से उसके एक एक अक्षरों पर वो चल रहे थे सुन रहे थे मानो कानों से, उनका ध्यान नहीं है नहीं था कि मृदंग बज रहा है, जय जयकार जगन्नाथ जी का हो रहा है, रथ कहां चल रहा है, क्या क्या शब्द हो रहा है, उसमें कौन है, उन्हीं ने देखा कि महाप्रभु के पास में कोई खड़ा ये नहीं देखा, उनको ये पता नहीं चला कि रथ की रस्सी कहां है और कौन किधर में दौड़ रहा है, उनका लक्ष्य कहां था, महाप्रभु के मुखार था और उनसे जो बातें निकलती थी उनको पूरा पूरा सुनाई दे, अर्जुन के लक्ष्य भेद की तरफ कोई तरफ में भक्ति ऐसे ही होती है, एक लक्ष्य तो एक उद्देश्य यदि होगी तो वो भक्ति साधन, और यदि लक्ष्य बहुत हो गया ना, चिड़िया को देख रहे हो हाँ, दाल को देख रहे हो हाँ, हमें देख रहा हूं तो जी जरूर आपको देख रहा, बड़ा आपको कैसे नहीं, गुरु को कैसे नहीं देखूंगा, और सभी कुछ दिखाई दे रहा सामने का, ठीक है धनुष बाण रख दो, अर्जुन से पूछा क्या देखता है, हमें देखता है नहीं, हिलों को नहीं, डाल को नहीं, पेड़ को नहीं, चिड़िया को नहीं, चिड़िया के और तो गला को देखता है नहीं, मुंह को देखता है नहीं, नाक देखता है नहीं, हवें देखता है नहीं, आंख देखता है नहीं, क्या देखता है, बस उतनी देखती चुका, बस मारो झट लग गया, ऐसे गुरु परीक्षा करते हैं भगवान, ऐसे तुम भक्ति करता है हाँ, किसका,
नारायण का करता हूँ, जगन्नाथ जी का करता हूँ, ब्रह्म का करता हूँ, गणेश जी की भी हमारे पास में है, दुर्गा जी थी, काली मैया थी, संतोषी मैया थी, नई नई जितने भी देवता है 1,833 करोड़ देवता हमारे सबका फोटो लगा रखे हैं, सबकी पूजा छोटे गण। जमुना जी के पास जाता हूँ, द्वारका दर्शन करके वहीं से परिक्रमा करता हुआ बंगाली घाट सप्तर से, और इधर पेड़ पौधे भी है उनको भी जल चढ़ा देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, वहां से लगता नहीं तुम्हारी पूजा नहीं। इसके बाद में मैं तो केवल विष्णु स्वरूप को मानता हूं, नारायण को, लक्ष्मी नारायण को, विष्णु को, द्वारकाधीश को, और बिहारी जी को, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब को। हुआ तो यह भी है किंतु और आगे बढ़ो तो द्वारकाधीश को भी, बिहारी जी को भी, गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, कृष्ण को, सबको मानता और किसी को नहीं। पर ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ो। तब वो बोलेंगे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, और आगे बढ़ो। तब वो कहेंगे गोपीनाथ, बस ठीक, वहां पर गोपीनाथ का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य भजन होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में जो कहा गया मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ गौड़िया परे आत्मसार, ये एक ही स्वरूप में तीन अवस्थाएं हैं, एक ही कृष्ण के, गोपीनाथ की, ये तीन तीन स्वरूप। पहले अवस्था में उनके साथ में संबंध होगा तब उन्हीं का नाम होगा, जब वो उनकी सेवा आरंभ करेगा तो अभिधेय तत्व को उनका नाम हो जाएगा, और जब अभिधेय का फल जबकि कृष्ण मिल जाएंगे उनको तो उन्हीं का नाम है। एक ही वस्तु एक लक्ष्य दे जाएगा तब भजन होगा, और मन इधर उधर में रहेगा तो कोई भजन। इसलिए कहते हैं यहां पर कि एक निष्ठा मां वो गोस्वामी सुन रहे थे, सुन करके वो रथ यात्रा रथ पहुंच गया कहां, सुंदराचल में पहुंच गया, अर्थात वृंदावन गुंडीचा मंदिर में पहुंच गया। सब लोग क्लांत हो गए थे। पहुंचने के बाद में ठाकुर जी अपने घर में गए, उनकी आरती हुई, आरती होने के बाद में सब लोग आकर के स्नान इत्यादि किया, और महाराज प्रताप रुद्र राजा ने उनके लिए तरह तरह के मिष्ठान पकवान और सब खाने की व्यवस्था की। महाप्रभु ने सबको बैठा करके अपने खिलाना चाह, किंतु भक्तों ने परोसने के बाद में कहा कि आप नहीं बैठेंगे तो ये लोग नहीं खाए, फिर इनको भी बैठाया, नित्यानंद प्रभु बैठे, अद्वैताचार्य बैठे, और सब स्वरूप दामोदर और सब लोग अपने आप प्रदर्शन में लग गए। बानीनाथ को भी लगाया, भोजन के बाद में विश्राम किया। दूसरे दिन फिर ऐसे, अब वो दूसरे दिन ये महापुरुष उधर रह गए, किंतु ये कहां चले गए, हरिदास ठाकुर के यहां, और वहां जाकर के हरिदास ठाकुर के साथ में अपने को दीनहीन समझ करके और वहां पर उस श्लोक को लिख लिया। वो श्लोक नहीं लिखा, वो तो अपने मन में रखा अनुरूप, और वैसे ही अनुरूप, उसी के अनुरूप, भाव के अनुरूप उन्होंने दूसरा श्लोक लिखा, और लिख करके ताल के पत्ते पर और लेकर के लगा दिया छप्पर में। और सवेरे ये स्नान करने गए, इतने में महाप्रभु जी स्नान करके और वहां पर आए। हरिदास ठाकुर को प्रतिदिन दर्शन देते थे, हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे, सोचित मैं बहुत दीन हूं, मुसलमान, मेरे चलने से रास्ता भी अपवित्र जगन्नाथ जी का हो जाएगा, इसलिए भक्त लोग अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए उस रास्ते पर मैं नहीं चलूंगा जिससे कि भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं जाते, दूर से जगन्नाथ जी का वो चक्र दर्शन करके, और प्रजा जो होती है उसको दर्शन करके और साष्टांग प्रणाम करते और भजन करते। इसलिए महाप्रभु जी को बाध्य होकर के वहां पर जाना प्रधान जाना महाप्रभु जी जाते उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कराते। तो महाप्रभु जी जब गए तो जाकर के हरिदास जी का कुशल समाचार पूछा और इतने में उनका हाथ ऊपर में से पकड़ने के लिए पहुंचा तो वो लग गया पत्ता उनके हाथ में। तो पत्ता लगा तो उन्हें निकाल लिया, निकाल करके देख हमारे भाव को कैसे इसमें लिख दिया, कौन लिखा। हरिदास ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वही बालक जो आया है ना रूप नाम का वही लिखा। ठहर गए, प्रतीक्षा करने लगे। आई इतने में जब वो स्नान करके आए रूप गोस्वामी जी, साथ ही साथ उनको पकड़ करके पीठ पर थप्पड़ लगाया, प्रेम का थप्पड़ लगाया, तुमने कैसे हमारे मन का भावों को जान लिया। उस समय स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी, अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, रसिक वैष्णव थे, उनमें से सब दामोदर बोले, जिसको आप जानेंगे वही भाव को जानेंगे। वो क्या प्रसादम प्रसाद लेशानुगृहीते वही जनाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चन्न एको अपि चिरं विच्छिन्न। लाख कोटि जन्म तक खोजने पर भी उसको नहीं पाया जा सकता है। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपने आप से ही जाने, जब देव जनाए जिसको जना देते हैं वही जान सकता है और कोई नहीं। इसलिए भगवान की कृपा से ही उनको जान सकते हैं। इसलिए आप मालूम होता है आपने शक्ति संचर किसके हृदय में की है, इसलिए आपके भाव को जान सका है। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जी ने कहा ये हमारे भावों को जगत में स्थापित कर सकता है, प्रचार कर सकता है। सब लोगों से अन्नत प्रार्थना करते हुए कहा इस बालक पर आप सभी लोग कृपा करें, शक्ति संचरित करें, जिसे कि जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सके और ऐसी पुस्तकों को पारिभाषिक रूप में लिख सके। इसलिए उन सब की कृपा से महाप्रभु जी करवा करके और स्वयं शक्ति संचरित करके रूप गोस्वामी के द्वारा ये भक्ति गोस्वामी सिंधु, उज्ज्वल मणि, अलंकार कौस्तु और न जाने कितने ग्रंथ उपदेशामृत इत्यादि उपदेशामृत हम लोगों के लिए, उत्तम भक्तों के लिए उज्ज्वल निर्मणि इत्यादि ग्रंथों का पढ़ने। आज भी विद्वत समाज में, भक्तों के समाज में इन ग्रंथों का विशेष होता। यदि उन सब चीजों को पढ़ सके, जान सके, सुन सके, हृदय में धारण कर सके तो हम लोग भक्ति क्या चीज है इसको समझ सकते हैं, विशेष करके प्रेमा आज यही करते हैं।
ज्ञानसुंदरश्च ज्ञानशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिश्री। हा देवी काकुहर गतगतयाच्य वाचा निपत्सभोवि दंडवतो दुर्गार्थी अच्छाप्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा हर्विके तव गणे गणनम्। अंगश्यामलिच्छताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जटंजागुदरोधतन पट्टंबर से श्रिय बिंदारण्य निवासिनम हृदिलसद्दामाधिरामोदरम राधाचंद्रवेशितोज्जलभुजं ध्यायेन्दाम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये चित्तासमाधितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सखालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय यान् प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्यन् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति सम्मेतया सर्वोभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिना तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना शिवेज्ञाय राधे तं नय माम्
हरियाली थी आज पर ब्रज में सर्वत्र ही विशेष करके वृंदावन में और बरसाना में या और सब जगहों में बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। विशेष करके वृंदावन में और बरसाने में अधिक महोत्सव होता है। आज देश विदेश के लोग वृंदावन में आए होंगे, बरसाना में भी दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन में भी। वृंदावन में न जाने कितनी पार्टियां, लीला पार्टियां, रासलीला की अपने अपने मंचों से विशेष रूप में हरियाली तीज के संबंध में नित्य गायन और लीलाएं अपने वो सब करते हैं। आजकल सावन महीना चलता, देखते हैं कि कोई समय नहीं, बेसमय नहीं, छोटी छोटी बूंदियां पड़ती रहती, फुहारे पड़ती रहती, उसको झींसी भी कहते हैं। ब्रज में फुहारे धीरे धीरे वर्षा होती है, खूब जोरों की नहीं, धीरे धीरे वातावरण शांत मधुर बना, प्रकृति सब जगह हरी साड़ी पहन रखी है। जिधर जाओ ब्रज में और समय सूखा रहता है, कहीं घास इत्यादि नहीं दिखाई। आजकल जितने कुंज होंगे, जितने पेड़ पौधे होंगे, लताएं होंगी, जहां पर घासी होंगी, सब हरा रंग सब। इसलिए इस चीज को सावन महीने की हरियाली चीज बात है। जितनी भी ब्रज की लड़कियां हैं उनके हृदय में उमंग भर जाती है। हम पिताजी के घर में रहे, इसलिए पिताजी भी सब लड़कियों को अपने घर पर माताएं भी, पिता माता नहीं है तो भैया भी बुला ला, वो घर में स्वच्छंद रूप से ही डोले लगाकर एक दूसरों को सावन महीने का गायन करते थे और अपने ससुराल में ये सब संभव पर नहीं। अंकुश रहता है, मर्यादा का अंकुश, इसलिए वो अपने पिता के घर में स्वच्छंद रीति से अपनी हिलती डुलती और बड़े आनंद से रहती। राधा जी की
योग माया के द्वारा शादी हो चुकी है, जावत में है। प्रतिवर्ष वो सोचते हैं यही ये आती है शाम का महीना, वो सब गिनने लगती हैं अंगुलियों पर, अब तीज की स्थिर की है और पिताजी या माताजी भैया को कब भेजेंगे जो हमको दे जाए, सब की यही है। जिस लड़की को माता पिता ने नहीं बुलाया वो बड़ी दुखी होती है। तो सावन का महीना बीतता चला जा रहा है, अमावस्या आ गई और छटपट करने लगी, श्रीमती जी भी राधा जी भी छटपट करने लगी। यहाँ पर स्वच्छंद रूप से अपनी सहेलियों से मिल करके ये डोला इत्यादि पर नहीं बैठ सकते, इसलिए घर जाने के लिए पिताजी के लेहा जाने के लिए छटपट कर रही है, अमावस्या से गिन रही। अमावस्या से घर से कोई नहीं आया लिए आने उनको ले जाने के लिए, तो अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने छत के अटारी पर चढ़ गए और मुख कर दिया बरसाने की तरफ में, बार बार कंठित होकर के और उगुलहा प्रांत होकर के उतर में निहार रही है, भैया अब आए, अब आया, अब आया, यहां से कोई आएगा। अब दूज भी आ गई माने कल वाला भी, अब रहा नहीं जाता। उस समय देखा एक बंजारा उसी रास्ते से जा रहा है। बंजारा किसको कहते हैं? बंजारा बंजारे होते हैं जो अपना सारा माल गाड़ी पर, गधों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर, बैलों पर लाद करके यहां से वहां चलते हैं। विशेष करके ये बंजारे ब्रज में बहुत थे, अब तो वो गवर्नमेंट ने उनको बसा दिया किसी किसी जगहों में, नहीं तो सब माल लिया दो चार दिन यहां ठहरे, जब नहीं हुआ तो फिर वहां चले गए, उधर से वहां चले गए, कुछ चोरी लूट मार जैसे कुछ हुआ भुला भुला करके जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कारीगरी भी जानते हैं, कौशल भी जानते हैं, चोरी की विद्या में, ठगने की विद्या में बड़े निपुण होते हैं, वहां वैसे तो वो बन जा रहे राधा कुंड में गिराज गोवर्धन में बहुत रहते, अभी भी वो हैं, अभी भी देखते हैं सैकड़ों की संख्या में ही इधर से उधर में चलते हैं, बस बहुत कम हो गया। तो वो बंजारा कोई परिचित बंजारा, वो उधर से आ रहा है, रास्ते में जा रहा है, राधा जी ने देख लिया और पहचान लिया उस बंजारे को। बंजारे को पुकारने लगी, अरे भैया भैया, उसको भी कहने लग गई ग्राम के नाते से। उसने देखा अरे वो तो महाराज विश्वामी जी की ये लड़की है बुला रही है, वो भी वो चला गया दरवाजे पर और ये भी उतर करके चली आई उससे बातचीत कर रही, बातचीत कर रही है ये तुम गांव जाना लौट जाना, हमारे पिताजी को कहना मैं आज तक रास्ता देख रही हूं और अभी तक हमारा भैया नहीं आया हमें लाने के लिए, और सब कुछ में कहते कहते वो रो पड़, आंखों में आंसू भर है। बंजारा भी ऐसे ही रोने लग गया, बंजारा भी वैसे ही उसकी लड़की का भाव देकर के, मानो इसी की बेटी है, अपनी बेटी की ये स्थिति देकर के वो बंजारा भी रोने लग गया। उन्होंने कहा जैसे हमारे पिताजी को कहना है जैसे अब हमको भूल गए, मेरी मैया हमें भूल गई, प्रतिवर्ष तो इस समय अंतर तक बुलाती थी, तो उसने बुलाया नहीं। हमारे घर के किसी ने हमको याद नहीं किया स्मरण नहीं किया। अरे गांव वालों में हमारी सहेलियां वो सब अपने अपने घर पूछने लगी, अनंग मंजरी आई थी नहीं, उनकी छोटी बहन और सबके लिए पूछने लगी। मैं समझते हूं कि केवल मैं ही नहीं आई और बाकी हमारी सब सहेलियां हमारी प्रतीक्षा कर रही। तो पिताजी माताजी भाई सभी लोग भूल गए, गांव वाले भी मुझे भूल गए। उन्हें याद दिलाना कि वो तो छटपट करके रो रही है, व्याकुल है, और आप लोगों ने उसको स्मरण नहीं किया। इस प्रकार से बहुत सी बातें उससे की और वो भी रोने लगा। ही रोने वो सचमुच में कहीं जा रहा था, वो लौट गया और लौट करके कहां पहुंच गया, बरसाने में। और विश्वभानु महाराज से, कृतिका जी भैया जी से भी, और रो रो करके सचमुच कहा, आप लोग बड़े बेदर्दी हैं, निष्ठुर हैं। सभी लड़कियां चाहती हैं कि आज के दिनों में हम ये सावन के महीने में हम लोग अपने पिताजी के घर में रह करके स्वच्छंद रूप से झूले पर झूले, गान गाएं और फुहारे में बोले और बड़े आनंद से रहे। तुम लोगों को याद नहीं आती तो उनसे कह देना, यही कह करके वो बंजारे ने उनको बतलाया। बंजारे के कहने से उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने तुरंत बुलाया श्रीदान को। अरे तुम्हें भी याद नहीं, तुम्हारी बहन वहां रो रही, उसको जल्दी से जाओ बुला लो। उन्होंने उसके साथ में मिठाइयां तरह तरह की सब चीजें दे दी, जैसे जाता है भाई अपनी बहन के पास में। एक आदमी भंगी पर ले लेता है अथवा कम हो तो अपने सिर पर ले लेता है, और तरह तरह की चीजें मिठाइयां खाजे और जो ब्रज में प्रचलित है वो सब चीजें लेकर के, कपड़े लत्ते सब लेकर के पहनते हैं। ब्रज की घेवर फैनी बहुत प्रसिद्ध है, और पिताजी ने भर करके उसको भेज दिया। अब वो जाते हुए शर्मा रहा है कि मैं आज तक गया नहीं, क्या कहेगी मेरी बहन जो हमको याद नहीं, इसलिए कुछ लज्जित होता हुआ वहां पर वो तो प्रतीक्षा कर ही रही थी भैया को देख करके, एकदम व्याकुल होकर के वो रोने लगी। दोनों भाई बहन मिले, दोनों रोने लगे। उन्होंने मैंने उससे कहा, भैया तुम लोग सभी लोग भूल गए, पिताजी भी भूल गए, भैया भी भूल गए, और तुम भी मुझे भूल गया। जब रोने लगे तो वो भी रोने लग गए। थोड़ी देर के बाद में जब उनको शांति, तब उसने कहा जैसे अभी हमारी सास से तुम कहो हमको ये छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, हर अपनी। तो वो सास के पास में पहुंचा और पहुंच करके उनसे कहा जे पिताजी ने कहा है जे बहन को ले आना, आप इसको कुछ दिनों के लिए, हम लोगों के पिता दोनों हैं उसके, किंतु सभी लोग विश्वभानु नंदनी अधिक कहते हैं, विश्वभानु लाडली उसको अधिक कहते हैं। क्यों? पिताजी बेटी को अधिक प्यार करते हैं, माताजी बेटा को अधिक प्यार करते हैं। उनको पहले सिद्धाम हो गया था ना, सिद्धाम उनको हुआ था, वो माताजी का अधिक प्यारा था, माताजी प्यार करती हैं बड़े बेटे। और ये इसके बाद में ये इनकी कैसी लड़की है, और बड़ी मुश्किल से जो चीज मिलती है, दुर्लभ चीज होती है, उस पर अधिक स्नेह होता है। यदि माता के गर्भ से लड़की का जन्म होता है तो माता पालन पोषण करती है ना, तो इसलिए उसका प्यार लड़की या लड़का पर होता है। किंतु कोई विशेष परिस्थिति में पिता का प्यार भी बच्चे पर अधिक हो सकता है। तो ये विशेष क्या परिस्थिति है? विश्वभानु महाराज प्रतिदिन सवेरे जमुना में स्नान कर रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, वो बरसाना छोड़ करके रावल में आए हैं। रावल के पास ही में जमुना जी बहती है और उसमें कमल के फूल से भरा हुआ है,
सवेरे में और भी फूल खिल जाते हैं और बड़ी सुंदर भीनी भीनी सुगंध आती है। तो ये सवेरे स्नान करने के लिए गए और जाकर के देखा तो क्या, सहस्रदर कमलों के ऊपर में एक छोटी सी बालिका खेल रही थी, परम सुंदरी लड़की तो थी नहीं, लड़का था। कृष्ण से के जन्म के 15 दिन की बात थी। ये बात है भादों के ये अष्टमी गई और वो आया। उसमें अष्टमी के दिन में वो सवेरे की बात, उन्होंने देखा कमल के फूल के ऊपर में एक छोटी सी बालिका अपने मुख में अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है और कभी कभी ऐसे पैरों को कर रही है, हाथों को कर रही है, जैसे साधारण में बालिकाएं स्वस्थ बालिकाएं करती हैं या बालक करते हैं। उस अपने पैरों को फेंक करके देख रही थी और कभी हाथ को चूस रही, कभी पैर को चूस रही है, उसमें दे रही है। उस समय में कृष्णान महाराज ने उसको देखा और देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उसको गोदी से लेकर के अपने हृदय में चिपका लिया। और इसके बाद में स्नान तो कर चुके थे, अब वैसे भी ये कपड़े गीले कपड़े में घर में गए और तुलसीदास जी उनकी पत्नी बैठी हुई थी, उनकी गोदी में दिया बड़े स्नेह के साथ, ये मेरी लड़की है, इसको खूब अच्छी तरह से पालन करो। इसलिए कृतज्ञता की अपेक्षा विश्वभानु महाराज जी की अत्यंत अधिक लाड़ली थी, क्योंकि उनको मिली थी ना, और वही लेकर के सब समय उसकी देखना सुनना लाड़ प्यार करना, अपनी गोदी में लेकर के उसे खिलाना खिलाना, ये सब कुछ करते थे। जब विवाह युद्ध हुई तो उसने विवाह इत्यादि दिया, किंतु प्यारी थी अपने बाप की, इसलिए अधिकांश लोग विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका इत्यादि करते हैं, उनकी भी प्यारी हैं, कृतिका माँ उनकी हैं, चित्रा के नाम से भी कृतिका नंदिनी इत्यादि उनका नाम है, तो अभी विश्वभानु महाराज जी के नाम। इसलिए विश्वभानु महाराज जी देख रहे हैं श्री राम दया लौट नहीं रहा। जब किसी चीज की प्रतीक्षा होती है तो समय काटे नहीं पड़ता, इसलिए वो गया है किंतु वो देख रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो फिर देखा जैसे सिद्धांत उसको लेकर के कैसे आ रहा है, वो बैलगाड़ी होती है ना, बहुत सुंदर बैलगाड़ी, वो एक चढ़ने वाली गाड़ी अलग होती है, माल ढोने की गाड़ी अलग होती है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बैल और उसमें भी कपड़े मखमल के कपड़े, उसमें सुंदर ये झालरें इत्यादि के साथ में, और सिद्धांत अपने आप उसको चला रहा है और अपनी बहन को लेकर के आया। सीमा पर आकर के जब जोर से रोने लगी पर विश्वभानु महाराज भी आ गए, गांव वाले आ गए, फिर घर ले जाकर के फिर उससे गले से उस समय मिलकर के ये गाने में रोती हैं लड़की, तो वो गाने में ही रोने लगी और जो जो उनका कुछ था कहने का वो संगीत के माध्यम से रो रही है और पिताजी को कह रही है, और वो सुन सुन करके पिताजी भी मैया भी और सभी लोग रो रहे हैं। इसके बाद में फिर जरोना शांत प्रशांत हुआ, उन्होंने सुंदर सुंदर झूले विश्वभानु महाराज जी ने चढ़वा दिया। पासी में उपवन है, आपको फिर बरसाने में गौहर बन देखा ये सब बच्चे और उनके राजभवन में भी लगा दिया। और इतने में उनकी जितनी सहेलियां हैं वो भी आ गई, ये अनंग मंजरी उनकी छोटी बहने, इनकी शादी कहाँ हुई है, जावट में ही, किसके साथ में हुई है, उनका देवर है राधा जी का, उनके साथ में इन अनंग मंजरी के साथ ऊंचा गांव में ललिता देवी, उनकी शादी भी उधर ही हुई है, विशाखा जी की भी शादी आसपास में ही हुई, सब जितनी उनकी सहेलियां अस्त्र सखियां और हैं वो सब धीरे 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 आ गई। और आकर के इनसे मिली। यहां तक कभी कृष्ण ने सुन लिया कि श्रीमती जी अब बरसाने में आ गई है, वो भी किसी न किसी रूप में वहां पर सम्मिलित होने के लिए आते हो। झूला लग गया, कखियां उनको मलार राग में गान करने लगी और झूला फिर चल रही। थोड़ी देर के बाद में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके कृष्ण गोपी भेष में वहां पर आए। इसके बाद में कृष्ण वहां पर बैठे, फिर दोनों से परिचय हुआ और उसके ऊपर में बैठा। पहले राधा जी बैठ रही हैं, कृष्ण और ललिता सब झूला रहे हैं। इसके बाद में राधा जी बैठ, कृष्ण बैठे, सखियां झूला रही। फिर इसके बाद में राधा जी बैठी, कृष्ण झूलाने लगते। फिर राधा कृष्ण दोनों बैठे, दो तरफ झूला एक तो होता है, एक पत्ता दे दिया, दो आदमी या एक आदमी उसके ऊपर में बैठ गया झूलने का, बैलेंस से झूलता है। उनको झुलाने की पहले थोड़ा सा झुला दिया, छोड़ दिया, वो ऐसा जो चढ़ने वाला है झूलने वाला खुद ऐसा बैलेंस करेगा, अपने आप ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। और झुलाने वाले जो है तो कोई बात ही नहीं। तो वो एक तो हुआ जो एक साइड से, और एक होता है दो पट्टे कुछ थोड़ी सी दूर पर आमने सामने होते हैं, उधर से कृष्ण बैठ गए, इधर से श्रीमती राधिका जी बैठ गए। झूला जब इस तरफ में ऊपर जाता है कृष्ण के तरफ में, तो कृष्ण ऊपर हो जाते हैं, श्रीमती जी नीचे हो जाते हैं। फिर इधर से जब चलते हैं श्रीमती जी ऊपर, कृष्ण नीचे। इस तरह से कभी खूब जोर से झूलने लगता है, कृष्ण जान बुझ करके जाते हैं। इस प्रकार से सब झूलाओं का वर्णन ये सब शास्त्र इत्यादि में देखने में, विशेष करके हमारे रूप गोस्वामी और हमारे गोस्वामी लोग रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि के साहित्य में देखा जाता है। पीछे से हिंदी साहित्य में आया तो इनके हरिदास ठाकुर जी के, सूरदास के और दूसरे राधा बल्लभ के जो गोस्वामी है, हितहर वंश इत्यादि के हिंदी के साहित्य में भी ये सबका वर्णन हुआ है। जिस समय में ये हो रहा होगा उस समय इसका लालित्य कितना होगा और माधुर्य कितना होगा। और जब कृष्ण चले गए मथुरा और द्वारका, उस समय में पहला वर्ष यदि आया होगा तो उस समय का कैसा भाव होगा, तो भी अद्भुत होगा। इसीलिए उसी के लाइन में आज भी ब्रज में सर्वत्र ये झूले और मल्लाराग से ये कीर्तन इत्यादि होता है। बाईचांस आजकल बादशाह वैसे भी सावन महीने में ऐसे ही होती रहती है। इस तरह से ये उत्सव मनाया जाता है। ऐसी ऐसी सब लीलाएं, मनोहारी लीलाएं पद के साथ में गायन के द्वारा और बड़े भावपूर्वक राष्ट्रमंडलियों में किए जाते हैं, बरसाना में भी होते हैं। हम लोग अभी दो एक पद इसके झूले के अभी हम लोग सुनेंगे। आ जाओ इधर में, आओ
कृपा सिंह पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावचनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय चैतन्यनाम्ने गौरवस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विशभान्विते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकुभर गदगदयाद्यवाचोविदन्दवत उद्भटर्षि आस्यापृषादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्वे तव गणे गणनन्दि अङ्गश्यामलिङ्गटाभिरमितो मंदिरुतेन्दीवनम जगदं जागुदरोति संविदधतम पट्टम्बर प्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदिलसत् दामाभिरामोदरम राधा संग निवेशितो जलभुजम ध्यायेन ताम् भक्त्या विधिनापरागलक्ष्यैश्चित्त्वा कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे मत्सु गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुते समपे च कृत्यं दैपान्यनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिवान् तवैवास्मि तवैवास्मि नगिमान् त्वया विना राज्ये सौनैमाम्
भजन के रहस्य में हम लोग पढ़ते पढ़ते अष्ट ज्ञान साधन तक ये सब साधन कोई भी भक्त जबकि भावावस्था में पहुंचकर उससे ऊपर में उठता है तो ऐसे ही चिंतन करते हैं। जिस समय चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी में पहुंचे होंगे और जगन्नाथ जी को देखा पहली बार जगन्नाथ जी को देखा उस समय उनकी क्या भावना आई वो यही भावना प्रियम प्रिय स्वयं सहचर स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र यही सब भावना आने के कारण और झट मुक्षित होकर के गिर पड़े देती सुख बुद्धि नहीं रही और राधिका जी की वह स्थिति जो अधिरूढ़ भाव में होती है अधिरूढ़ में ही मादन और मोदन होता है मादन में मोहन और मोदन होता है ये सब चीजें उनके शरीर में प्रकट हो किसी भी मनुष्य के शरीर में ये सब चीजों का होना असंभव बहुत दुर्लभ साधारण उसमें कुछ कुछ देखा जा सकता है बहुत थोड़ा किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य देख करके विस्मित हो गए ये मनुष्य शरीर में ये सब महाविरूढ़ भाव की जो हमने शास्त्र में पढ़ी और उसको ही इसमें हम लक्षित कर रहे हैं ये साधारण आदमी को पता है। तो जबकि चैतन्य महाप्रभु नकली है नकली कृष्ण है ना उनके भावों को चुरा करके ले आए उनके लिए स्वाभाविक नहीं है और जब वो कर रहे हैं तब इतना भाव आ रहा है तो राधिका जी को कितना होता होगा स्वाभाविक रूप से इसलिए राधिका जी में तो और भी न जाने कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं इसलिए इसको आस्वादन करने के लिए वो सब भक्त लोग इसका आस्वादन कौन करेंगे जो कितना ऊंचा उठ गए हैं भाव में पर सिद्धि कुछ कुछ अब होने जा रही है वो बिल्व मंगल जैसे भाव के साधक लोग इसको कुछ कुछ समझ उसकी कल्पना कुछ कुछ कर सकते हैं सब लोग इसकी कल्पना नहीं कल मैं एक जगह गया था वहां पर वहां के प्रधान आचार्य ने कहा कि तुलसीदास जी या किसी ने ये नहीं कहीं लिखा कि उनका जन्म कहां हुआ उनके माता पिता का नाम क्या उनके बाल्यावस्थाओं की बातें और सब चीजें जन्मभूमि इत्यादि समय ये सब कुछ नहीं कोई भी पहले के महात्मा लोग होते थे कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं था ऐसा क्यों छठ विद्युत की भांति हमारे हृदय में एक भावना आई ये क्यों पहले मैं इस पर विचार नहीं करता था और उन्होंने सांसारिक बातें
ये सब उल्लेख किया, जब अभी तक ठीक नहीं हुआ जो वहाँ है उनका जन्म न सोरो में जन्म है न
बांदा
बांदा में जन्म है, कहाँ जन्म है और सचमुच में उनके पिताजी का नाम क्या है क्या नहीं, इस पर मत विरोध है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। हम लोग भी गए थे एक बार वहाँ पर सोरों में, तो उनके जन्मभूमि पर हम लोग गए थे जहाँ पर जन्मभूमि दिखलाते थे, मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है, अब तो धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा हिंदू लोग भी जाने लगे, नहीं तो मुसलमान लोग जाने ही नहीं देते। जहाँ जहाँ ऐसी सब चीजें हम लोगों ने दखल कर, तो ये सब चीजें क्यों नहीं लिखी जो मेरा जन्म इस गाँव में हुआ और इस जाति में हुआ, हमारे पिताजी का नाम क्या है, मैया का नाम क्या है, मैं कब आयु में कितनी आयु में मैं घर छोड़ा, मेरी शादी हुई थी कि नहीं, ये सब चीजें क्यों नहीं लिखा। बड़ी बड़ी करुण कथाएं सुना रहे थे, जो वो चाटता था पत्तव, जब माता पिता ने उसको छोड़ दिया तभी मर गए, तो वो पत्तल चाटते थे, किसी हलवाई के दुकान के सामने बैठे थे और कपुल्लर दूध का वो फेंक दिया तो कुत्ता झपटा ये भी झपटा, तो अंत में इन्होंने उसे छुड़ा करके दे करके इतने में सब लोग उसको मारने के लिए दौड़े, हमारे कुत्ते को ये दूध भी नहीं पीने देता। इसके बाद में नरहरि उनके गुरु थे, वो आए और देखा जैसे ये बड़ा प्रतिभाशाली लड़का ये होगा, तो उन्होंने अपने पास में रख लिया, फिर मंत्र देकर के राम बोला उसका नाम। साधु संत लोग जानते हैं ये सब विषय आत्मा का नहीं, आत्मा का जन्म कहाँ हुआ था, उसका पिताजी कौन है, वो कौन स्थान में आत्मा का जन्म हुआ, यहां हुआ ना वहां हुआ, अरे वो तो भगवान के परिकर हैं, भक्त लोग हैं, उनका जन्म और मरण से क्या संबंध और संसारिक माता पिता से क्या, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी हमारे वाल्मीकि जी हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहीं भी नहीं लिखा कि हमारा ये बंगाल में जन्म हुआ कि कहां हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं नहीं लिखा, हमारे रूप गोस्वामी कहां के जन्मे कहां क्या थे कहीं नहीं लिखा, उसको जीव गोस्वामी ने अनुग्रह करके ये बतलाया जिसे हमारे लोगों को पिताजी को चाचाजी को कोई मुसलमान न समझ ले, इसलिए कुछ भागवत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में टीका में कुछ लिख दिया, नहीं तो उनके संबंध में कुछ पता ही नहीं था कि कौन है कहां के नहीं उन्हों की बात क्या नरोत्तम ठाकुर इत्यादि तक भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा, गुरु जी ने भी हमारे नहीं क्यों नहीं लिखा, उसका कारण यह वो लोग उस जगत के हैं, उनको यहां पर जन्म से मतलब क्या है, मरण से और उस इतिहास से क्या, वो एक लड़का था वो हलवाई के दुकान में था, एक किसी ने डूब करके कुल्लर लेकर के फेंक दिया वो दौड़, इसलिए इनकी महानता या क्या प्रतीत होती है, मैं तो समझता कि महापुरुषों के चरित्र में ये सब है ही नहीं है, वो झूठ कल्पित करके लिखा, कहां से उनको मिला है, क्या उस समय वो थे जो देखा, महापुरुषों के जीवन में ऐसी चीजें नहीं, होनहार वीरवान के बहुत अच्छी करने था, उनका जन्म उनकी सब विधाएं ये सब अलौकिक होती है, इसलिए ये सब चीजें कल्पित है, इसलिए उन्होंने ये इसलिए नहीं दिया, इसका कारण क्या, अरे वो तो गोलोक में नित्यकाल के लिए ही भगवान के परिकर है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम जब परिचय देते हैं जगत की तो क्या होगा, झूठ नहीं होगी, एकदम असत्य परिचय है, इसलिए इस परिचय से साधु संतों का कोई मतलब नहीं, किंतु अधिकांश लोग हैं इसी के लिए लड़ मरते हैं, इसी के लिए मामला मुकदमा न जाने क्या क्या करते हैं, जानने के लिए कौतूहल होता है, इसलिए इसके तरफ में न झुक करके चिन्मय वृत्ति की तरफ में हम लोगों को चलना चाहिए, धन्य न
राधे अगर देखते ना था
प्रिय तो हो या मुश्किल, आप लोग भी इस चीज को समझेंगे इसलिए बतला दिया। लोगों को समझ में नहीं आता, बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर, बड़े बड़े साहित्य, राम को कल समझते हैं कि ये, या तुलसीदास को समझते हैं कि ये क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे या हम, भगवान को राम भगवान नहीं मानते। इसलिए उदाहरण कर कुछ दे करके और तुलसीदास जी के लिए केवल ये बतलाया, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए को दिवैरी समझत जपा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी बलिगुरु सजो कंस बन परिचन है जगमंगलकारी। ये माता पिता को जो कि भगवान के भजन का अनुकूल नहीं है उनको छोड़ने पर भी मंगल ही मंगल होता है, उसमें कभी अमंगल नहीं होता। माता पिता के बात क्या, गुरु को भी छोड़ दे जब वो भगवत भजन के विरोधी है तो उसमें भी मंगल होता है। काकभूत पंडित जी ने अपने गुरु नमस्त ऋषि को दुत्कार दिया, हमको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो निराकार ब्रह्म की उपासना का मंत्र दे रहा, नहीं हमको जो भक्त उनका ये जाप कौआ हो जाए, कौआ होना मंजूर है, कांकाओं का होना मंजूर है, किंतु तुम्हारे जैसे गुरु से हमको कोई जरूरत नहीं, तो उनका अंत में मंगल ही। इसलिए जहां तक हो भजन में देहात में बुद्धि पर त्याग करने की जरूरत, भजन के द्वारा जब तक देहात्म बुद्धि दूर नहीं होगी तब तक भजन में बहुत बाधाएं हैं। जिसकी देहात्म बुद्धि देह में आत्मबुद्धि आत्मा की बुद्धि ये जब तक नहीं छूटेगी तब तक भगवत स्वरूप का कोई भी अनुभूति उसकी अनुभूति हो जाए नहीं। इसलिए इसको भजन के द्वारा दूर करने की चेष्टा कर, देहात्म बुद्धि मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं रंक हूं गरीब हूं धनी हूं अमीर हूं ये हूं वो हूं, यह सब जागतिक सब को दूर करके मैं भगवान का नित्य दास हूं। प्रिय सोयम सह अयम सोयम कृष्ण वही प्रियतम है, मेरे प्रियतम है। मतलब क्या, वही मैंने पहले बस ये हमारे सुदामा विप्र गए द्वारका, बहुत दिनों के बाद में अब वहां पर जब पहुंचे तो कृष्ण दौड़ करके उनको अपनी गोदी में उठा लिया और रुक्मिणी के पलंग पर उनको बैठा दिया और अपने आंसुओं से उनके चरणों को पखारे, सोने के गड़ुए से उनकी पत्नियां सुंदर सुशीतल सुगंधित जल दे रही हैं और कृष्ण उसको पखारे और पखाते हुए न जाने कैसे कैसे उनको भाव आते। इनके मन में ऐसी भावना उठी कि कृष्ण तो ब्राह्मण वत्सल हैं, शायद इन्होंने हमको पहचाना नहीं, ब्राह्मण की वजह से हो सकता है कि ये आदर्श है या कहीं दूसरे की भावना में तो नहीं बह गए इसलिए हमको इतना आदर कर रहे हैं, नहीं तो यदि जानते कि वही दरिद्र ब्राह्मण का लड़का है तब तो ऐसा नहीं करते। कृष्ण उनकी इस भावना को भांप गए, भांप करके माने समझ गए और समझ करके बोले जी देखो याद है तुमको बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए, याद है गुरुगृह में हम जब तुम पढ़ते थे तो हम दोनों को गुरु पत्नी ने आदेश दिया लकड़ी घर में नहीं या रसोई कैसे बनेगी, तो हम दोनों चले गए और उसी समय में हदाप मेघ उठा, जाड़े का समय अब संध्या हो गई थी पानी एकदम, हम लोग घर से चल दिए, थोड़ी दूर आगे गए तो घना घोर वर्षा होने लगी। याद है सके देखा जी, ये समझ गया, ये तो ठीक बात ला रहा है। फिर बोले जी, हम वहां पर पहुंच करके हमने इकट्ठी तो लकड़ियां किसी प्रकार से कर दी, किंतु इसके बाद में जब घना घोर वृष्टि होने लगी, ठंड बढ़ने लगी, अंधकार हो गया, हमने सोचा जब घर कैसे लौटे हैं, लकड़ियां तो भीग जाएंगी, बस लकड़ी तो अपने सिर पर उठा रहे और दोनों पानी में भीगते हुए आगे बढ़ेंगे, कहीं डूबने जाए पानी में, कहां गड्ढा कहां क्या, कृष्ण को भी पता नहीं, इनको भी नहीं, साधारण मनुष्य होती, इसलिए हम लोग ठहर गए पेड़ के नीचे, रात भर कांपते रहे। और थोड़ी देर के बाद में जब सवेरा ब्रह्म मौत हुआ तो गुरु जी लाल तेल लेकर के पहुंचे। अरे कन्हैया कृष्ण कहां है, कहां है कृष्ण, सुदामा कहां है, सब सेवक लोग आ गए थे किंतु दो लोग थे, ब्राह्मण तो बड़े बिगड़े जी, तुम ऐसे ही अंत संत आदेश दिया कर। कहा याद है उस समय, तब समझ गए जी नहीं, जान करके ऐसा कर रहे, मैं वही कृष्ण और तुम वही सुदामा, ये है ना? वही का मतलब क्या, किसको याद नहीं है या याद होने पर उसको हम कहते हैं वही याद है। हम बहुत दिनों के बाद में कोई यहां पर हमारे सहपाठी आ गए, उनका देखा जो केस वो सब पका हुआ, अत्यंत जड़ वृद्ध था एकदम, हम भी तब वृद्ध ही हो गए कुछ दिन पहले की बात है, एकदम जड़ वृद्ध। तो वो कहने लगा जैसे मैं तो तिवारीपुर से आया हूं, मैं आपके साथ में पढ़ा हूं, आपसे मिले, तुम कौन है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैं वही हूं, वो बतलाया अपना नाम और फेस पर, मैं जो आपके पास में बैठता था। अरे वो बहुत दिनों की बात, ऐसे ही श्रीमती राधिका जी यहां पर पहुंची हैं, कहां, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मिली तो कुरुक्षेत्र में राधिका जी मिली हैं, किसे से, कृष्ण से। और वो कह रही हैं तो आयम आयम मैंने, ये जो है तुम वही हो, आयम का तात्पर्य आंगुली से दिखला करके था, कौन तुम हो। और राधिका जी के हृदय में कुछ भावना होगी तो भावना हो तो वो कौन कृष्ण होंगे। देखो एक बार मैंने कृष्ण कृष्ण शब्द सुना किसी सखी के अंदर, और उस नाम को सुन करके मैं एकदम मुग्ध हो गई, मैं उसे मिलने के लिए उस व्यक्ति के साथ में आतुर हो गई। मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, आपको पहले नहीं देखा, और देख करके मैं उस कृष्ण से मिलना चाहिए। इतने में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बड़ी मधुर, मैं पागलिनी हो गई और मैं दौड़ी उसे मिलने के लिए। कहां से ही आवाज आई, इतने में चित्राचकी ने सुंदर या विशाखा ने सुंदर कृष्ण का एक चित्र बनाकर के लिए हमारे साथ, मैंने कही सुंदर दुआ, हमारे मन को मोह दिया। मैंने सोचा कि अभी हमको प्राण छोड़ना है, आज ललना एक व्यक्ति को अपने हृदय को समर्पित करती है, दो को नहीं, इसलिए आज मैंने आर्य धर्म का उल्लंघन किया। पहले मैं कृष्ण नाम को देख करके हो गई, फिर एक दूसरे व्यक्ति जिसका वंशी जिसकी वंशित बनी, और तीसरा चित्र पर देख करके मैं हो गई। ये तीन पुरुषों से हमारा चित्र लग गया, अब ये शरीर को मैं नहीं रखू, इतने में लगता जी आ गई और समझाया जी चित्र उन्हीं का है जो कृष्ण है, और ये कृष्ण ही बंसी बजा रहे थे, इसलिए व्यक्ति एक, आप वही कृष्ण है, सो है वही कृष्ण जिसको मैं आपको देखा वृंदावन में, वो चार करते हुए बहुत दूर से देखा,
उस कृष्ण का दर्शन करने के अतिरिक्त आंखों का कोई दूसरा फल नहीं। अपना काम फल विदम न परम विदम सत्य पशु नवेश वक्रम ब्रजेश सुतो फोटो पर मुरली विराज रही हो वो ब्रजेंद्र नंदन आगे आगे बलदेव जी जा रहे हैं पीछे पीछे हजारों लाखों गैया करोड़ों गैया सखाओं के साथ में प्रदर्शित होकर के पर गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। और समय में आपकी दृष्टि कहाँ है? नैनोत्पलाशित तनु गोपियों के लिए मेरे लिए आपकी आंखें पूज रहे हैं। इस कृष्ण का दर्शन करना ही आंखों का चरम फल है। वही आप कृष्ण जिस कृष्ण के लिए गोपियां क्या कहती हैं वही कृष्ण बरहा पीड़न नटवर बपू कर्ण यो कर्ण कार तन कपिशम वै जयंती चमालन अरंध्रान रदर सुदया पूरयन गोप वृंदारण्यम शबदरमणम प्राविशत देश। वही कृष्ण जिनका ऐसा वेश है वही कृष्ण नद्दत तदा तदपधाई के मुकुंद की अवत लक्षित मनोभव। गोपियां कल्पना करती हैं विचार करती हैं कृष्ण को देख रही हैं। कौन कृष्ण को? आप वही कृष्ण जो जमुना जी नद्या मने ये अथवा मानसी गंगा इत्यादि अपने लंबे लंबे हाथों से कमल का फूल उपहार लेकर और अपना हृदय सब कुछ आपके चरणों में पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ जरागर। आप वही कृष्ण और राक्षसखली में कैसे कृष्ण? राक्षसखली में जो आलिंगन कर रहे हैं गोपियों को और एक एक कृष्ण एक एक गोपियों के बीच में दो दो गोपियों के बीच में राक्ष नृत्य कर रहे हैं याद है आपको? आप वही कृष्ण हैं जो हमारे बीच से अंतर्हित हो गए और आपको ढूंढते ढूंढते हम सब पागल हो गए। तासंग रति बिहारेण शांतानंद बदनान आपको याद है वही सह सामान्य कौन सह? तासंग रति बिहारेण शांतानंद बदनान सह प्राम मृज करणम प्रेमणा शांतमेनांग पाणिना। आप वही कृष्ण राक्षसखली में हम जब क्लांत हो जाते नित्य करते 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 तो देखते थे हमारे मुखों पर पसीने की बूंदे आ गई और अपने सुंदर सुकोमल सुगंधित उत्तरीय वो पीला वाला पीतांबर से बड़ी कैसे कोमल से कैसी भावना से आप उसको दूर कर देते। कभी कभी हमारे पैरों को संबान भी कर देते। आप वही कृष्ण तो स्वयं कृष्ण और सहचरी यह सहचरी मैंने अपने सहचरी को कह रही है कृष्ण तो सामने है ना सहचरी मैंने एक सहचरी को देखो यही कुरुक्षेत्र मिले था आज हम वही वृंदावन आज इनसे मिल रही मैं कौन हूं तथा अहम सा राधा मैं कौन हूं वही राधा कौन उसके लिए सा कह रहे हैं वही राधा जिसे मिलने के लिए जावट में आपने बटू का वेश धारण किया आप रह नहीं सके अब बटू का वेश धारण करके अलग जगाते हुए आप जावट में पहुंचे झोली ले लिया बगल में पोथी ले लिया ताल पत्र का छाता ले लिया खड़ाऊ ले लिया भिखारी बटू बन करके गए और वहां पर अलग निरंजन अलग निरंजन करने लगे मेरी सास का ही आपको कुछ देने के लिए ताकि मैं विधवा कहां का नहीं दे अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर में कोई ससुरा नहीं है सर नहीं है आप खरिए तो मैं ठहर नहीं सकता मुझको अभी जल्दी से जाना है वो दोहन का काल मात्र मैं ठहरता हूं और नहीं था जब लौटे तो कहेंगे तो हमारा तो अमंगल होगा, क्या करके अपनी बहू को वो समझाने, कहे मैं कभी जा नहीं सकता, पर पुरुष का मैं मुख नहीं देखूंगी, आप लोग मेरी निंदा करते हैं और आज आप ही हमको वहां धर्म भेज रहे हैं, मैं नहीं जा सकता। आज तो बहुत विपत्ति आई है, हमारा कुल ध्वंस हो जाएंगे, गाय मर जाएंगी, वो ब्राह्मण लौट जाएगा, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण हमने कभी देखा नहीं, अद्भुत है, कम उम्र का सन्यासी है, इसलिए जल्दी से ललिता विशाखा के चरणों में गिरी, अंत में बहुत मुश्किल से मनवाया तो वहां अपने ठाल लेकर के घूंघट निकाल कर, तो उसने कहा कि भाई तुम ना जाने कैसी हो, कौन है नहीं है, मैं कैसे दे, विधवा है साथ या क्या है, सदवा है अथवा तुम पुरुष है कि महिला है, मैं क्या है मैं कैसे समझूं, मैं अज्ञानित व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से, जिसको नहीं जानता वैसे भेजता है, देना तो दो मैं चला, तो देख करके वो प्रसंग समझ गई जो वही है, बस उन्होंने थाल उड़ाल करके पूरा जो चावल दाल या जो कुछ लाई थी सामान उनके सिर में, थोड़ी मैंने इसी सिर में उड़े उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे स्मान को अपनी गोदी में शिक्षा मांगने के लिए आया, तुम हमारे ऊपर में प्रसन्न वही मैं रहा था, मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस, आप लौट गए बड़े प्रेम के साथ, वही कभी वहां बरसाने में कौन वहां बिलासगढ़ में मानगढ़ में याद आपको नहीं, वही मैं हूं जिसके लिए आप माल्य हारने का भी धारण किया, हमको प्रसन्न करने के लिए न जाने क्या क्या किया, आज हम लोगों को ऐसे गृह में छोड़ करके यहां पर आप पता है, याद होने के आप मैं सारा था, मैं वही सारा था, कौन सी राधा, जब मैं आप हमारे पास में जा रहे थे विषमतम स्त्री वेशम सुबल सखाया पा रहे गिरा, चाहे पहले का ये मैंने रुक्मंजरी से कहा, देखो वो जो सुबल का सखा जो आ रहा है स्त्री वेश बना करके पा रहे गिरा, उसे बार निश्चित कर दो, हमारे भीतर में नहीं आए, मैं आज काला कोई भी चीज वस्तु नहीं देखना चाहता, कालों लोगों से हमारा मोह भंग हो चुका है, इसलिए उनको वहीं पर रोको, आप वहीं पर गिड़गिड़ा रहे थे, यह थोड़ा सा सामने जी का दर्शन कराने, मैं सारा था वही रहा, बहुत दिनों हम लोग छूट गए, वही कारण सारा था, इधम उभयो संगम असुखम, संगम असुखम, संगम सुखम नहीं है, संगम क्यों, आप हम वही दोनों हैं, आज बहुत दिनों के बाद में हम मिले हैं, मिले तो हैं ठीक है, किंतु असुखम वो सुख जब पहले मिलन में हम लोगों का ताज सुख, आज इस समय से इसमें कोई स्वार्थंगता नहीं, न रसाभाव है, न कोई इसमें आनंद अप्रीति कुछ झलकती है, न कोई भावुकता है, बल्कि ये वीरों को ही सूचित और कर रहा है, तथापि हम मिले तो हैं, तथापि वो संगम संग में मिलने से भी आनंद नहीं है, रस नहीं है, तथापि अंत खिलन मधुर मरुली पंचम दिशे, तथापि अंत खेलन हमारे अंदर में, अंत खेलन जो खेलती है हृदय में, क्या क्या खेलती है, वो भावना पहले वाली जो उन्होंने महाप्रभु जी ने पहले कहा था, बेतसी तरु तले प्रौढ़ा कदम्बानिदा, ये जो कहा था प्रौढ़ कदम्ब अलिना माने क्या, प्रतिष्ठे नो उड़ा, उड़ा माने क्या,
आतंक कोई चीज से भारग्रस्त होने पर वो जब धीरे धीरे चलने लगता है ना भार अधिक वजह से, उसी प्रकार वो जो हवा जो चल रही थी बेली चमेली के लेकर के और उसमें कदम्ब की अनिल कदम्ब के बन से जो हवा आई उसके पुलों को बंध को लेकर के वो कैसी हो गई कुछ भार ग्रस्त। अब वो सीधी नहीं चल रही, पैर ठीक ठीक नहीं चल रहे हैं ना, भार अधिक हो गया है तो इधर उधर तो धीरे 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 वो हवा की तलबंद सुगंध चल रही, ये उसके लिए अनुकूल है, प्रीति के लिए उन दोनों के मिलन में। और ये तेतसी तरु तल तले माने क्या, नदी के किनारे वेद का वन है छोटा छोटा हो, पासी में कदम्ब है और कदम्ब पास में है और उसके पासी में कदम्ब की छाया में हम बैठे हैं। बेतसी तरु तले इसलिए कहा है कि नदी में बेत के पेड़ हैं और उसके पास से ये बैठे हैं, स्वच्छंद मुक्त वातावरण निर्जन है वहां पर कोई नहीं और उसी में आप हमसे मिले, वही हूं किंतु आज बड़ा आप बर हो गए हैं। बर माने क्या, वही हमारे कौमार हर बर, कौमार हर किसको कहते हैं, कौमारम हरती इति कौमार, कौमार हर कौमार को कौन हरण करता है, पति विवाह होते ही कौमार काल खत्म हो गया, कौमारी काल खत्म हो गया, इसलिए आप पहले तो कुमार थे हम कुमारी थे और विवाह हो गया हो जाने के बाद में आप मेरे कुमार हैं, किंतु हमारा मन उसी बेतसी तरुकल के लिए उत्कंठित हो रहा है, उसी के लिए रूप गोस्वामी जी उसी के भावना के अनुसार में करें। वही वृंदावन छोटे छोटे सेवा कुंज में देखा है ना, छोटे छोटे कुंज और कैसे सुगंध हरी वो कदम्बों के बन से आ रही है, भ्रमण ढंग कर रहे हैं, कोयले कुहू कुहू कर रही है, वातावरण एकदम वैसा है। और निभृत निकुंज है, निभृत माने क्या,
कोई नहीं
निभृत कोई नहीं ऐसा मत अर्थ लगाए, अनुकूल वाले हैं, कुंज को साफ करने वाले कुंज को सजाने वाले वृंदा जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नंदी को खिले जाने वाले रहेंगे और रूपमंजरी प्रभृति ललिता इत्यादि रहेंगे, यह निभृत हो गए। उसमें पासी में कदम्ब के वृक्ष हैं, बड़े बड़े फूल उसमें आए, कभी देखा कि नहीं तुम लोग, हम लोगों ने तो देखा है, फूल को खाया भी है, फूल पकने को बहुत ही खट्टा मीठा लगता है, बच्चे खाते बहुत ही सुगंध रहती है। ये बतला जो बेली चमेली का गंध है और कदम्ब के वायु से सुगंध से यदि मिल जाए ना, एक विचित्र चीज हो, बहुत विचित्र चीज। पानी में चीनी मिला दी जाए उसको पियो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ो और तब पियो और थोड़ा उसमें से केवड़ा दे करके थोड़ा सा, अच्छा ये उसमें थोड़ा सा बर्फ मिला तो वो कैसा हो, और उसमें थोड़ी सी मलाई मिला दो कैसे सुंदर हो जाए, उसमें आम का रस थोड़ा सा मिला देता है, बर्तावा चला जा रहा है। ऐसे ही पहले तो था देवी चमेली का सुगंध और वो भी यमुना के शीतल झपोरों से लग करके आ रहा था, वो सुशीतल हो गया और उसमें बेली चमेली का गंध से अपने आप हवा जरा धीरे धीरे चल रही और उसमें भी कदम्ब का फूलों का कदम्ब के फूलों का सुगंध सौरभ उसमें मिल गया, विचित्र उन्माद को कराने वाला ऐसी ऐसा वो सुगंध। तुम लोगों को कोई ऐसी धारणा नहीं होगी क्योंकि शहर में रहते हैं, जो देहातों में रहने वाले यदि होंगे ना उनको पता, हम लोग स्कूल जब जाते थे 4 बजे एक बड़ा और सुंदर बगीचा था, उसमें इतने लंबे लंबे वाले केवड़ा का फूल था, वो दो माइल से इतना उसका सुगंध आता वातावरण को एकदम सुगंधित कर देता। अभी है सूर्य में मिलता है वातावरण समस्त को एकदम ये यदि फूल नहीं होते ना तो पृथ्वी का पर्यावरण जो या क्या कहते हैं ना जैसे कभी खत्म गड़बड़ हो जाता। तो इस तरह से प्रौढ़ा कदम पानीला प्रौढ़ माने इसको कहते हैं प्रौढ़ प्रौढ़ व्यक्ति है विचारों का प्रौढ़ है माने क्या वैसे सुगंध का प्रौढ़ सुगंध उसमें और देतसी तरफले